ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யுவர் அபவுட் டு லிசன் முண்டகோபனிஷத், பிரசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ சிவ் சரூப்ஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
பரம் பிரேமாஸ்பத் பரமாத்மஸ்வரூப் சூதாபந்து அக்ஷரமான தீன் ஹோத்தே. अक्षर जिससे सृष्टि बनी है, अक्षरा संभवा लिखा है. एक अक्षरात माने न अक्षर तीत अक्षरा, निच्छरण न होए, जो व्यय न होए, जो नष्ट न होए, वो अक्षर तत्व, वो आत्मा का अर्थ हुआ. और एक अश्नोति व्यापनोति अक्षर, व्याप्त जो होए. तो व्याप्त कैसे है? अक्षर में अक्षर आ ई ऊ ये भी अक्षर हैं. तो आ ई ऊ जैसे अक्षर हैं, ऐसे व्यापनोति व्यापक अर्थ है. जैसे गुरु परंपरा से आ की आकृति बनाई गई है, अलिफ की आकृति बनाई गई है, ए की आकृति बनाई गई है, वही रहती है गुरु परंपरा से प्राप्त. उसमें कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते. का खा गा गा गा, चा छा जा जा यहां, टा ढा डाणा, जो जैसी आकृति बनाई गई है वैसी चली आ रही है बराबर. ये अश्नोति व्यापनोति का अर्थ हुआ. अर्थात तो उसमें कुछ परिवर्तन नहीं है. अगर परिवर्तन होता तो अब तक बदल गई होती. गुरु परंपरा से प्राप्त जैसी आकृति, जैसी जगत सूरत बनाई वैसी आ रही. अक्षर तत्व का ही अर्थ हुआ. अच्छा, तीसरा अर्थ ये है, अक्षर माने आत्मा, अक्षर माने ब्रह्म, बेष्टि समष्टि सब ले लियो पूरा. जैसे पंचमहाभूत समष्टि के हैं वैसे ही. ऐसे जनरल मनुष्य था, मनुष्य एक जाति है, मनुष्यत्व जिसमें हो वो जाति होती है. नैयायिक लोग मानते हैं कि मनुष्य नहीं है, मनुष्यता व छेदक मनुष्य है, मनुष्यता व छेदक व छन्नो अगर मनुष्य है, घोटका व छिन्न व छिन्नो माने उस धर्म से युक्त होना चाहिए. मानवता असल उसमें नहीं है तो मनुष्य नहीं माना जाएगा. घोड़े में घोटकत्व तो नहीं है तो जाति नहीं मानी जाए, मनुष्य जाति हुई. अब आप विदेश गए तो वहां भारत का नाम लिया गया, भारतीय है तो भारत वाले लोग अपनी जाति में मान लेंगे, और ब्राह्मण ब्राह्मण में मान लेंगे, फिर बाद में मनुष्य में ब्राह्मण बने, फिर अमुक प्रांत के बने, अमुक देश काल आया, ऐसे बन गए धीरे धीरे. अब भारत, भारत में उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में अमुक जिला, जिला में ब्राह्मण, ब्राह्मण जाति के सब एक हो गए. मनुष्य जाति एक है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे अंग्रेज, एक जाति है. मनुष्य मनुष्य मानना चाहिए. तो संकीर्ण होते गए, संकीर्ण होते गए, सिमटते गए. संकीर्ण माने सिमटते गए. पहले भारत, भारत में उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में जिला, जिला में आए ब्राह्मण, ब्राह्मण में और समेट गए. कान कुब्जों में तो इतना झगड़ा है कि चार चूल्हे बनाए जाते हैं, वाजपेयी अलग, त्रिपाठी अलग, मिश्र अलग, अलग अलग जाति के हो गए. वैसे भेद पंचमहाभूतों में नहीं है. पृथ्वी में देखिए कहां भेद है. पेड़ पौधे सबको फल देते हैं, चाहे चंडाल ले और चाहे ब्राह्मण ले, वेदपाठी ब्राह्मण ले, सबको देते हैं. पृथ्वी जल, जल में कहां भेद है, चाहे गधा पिए चाहे ब्राह्मण पिए, जल में कोई भेद नहीं। तेज देखो अग्नि भस्म कर देती है सबको, जो उसमें आ जाए चाहे मल जाए चाहे मलमूत्र जाए चाहे हवन की सामग्री जाए, भस्म कर देगी वो अग्नि। वायु, वायु जो सांस लेता है गधा वही ब्राह्मण लेता है। आकाश जहां जो जो जहां जो जगह है आपकी खाली, वो गधे की भी है ब्राह्मण की भी है। तो इसका मतलब पंच महाभूतों से जब भेद नहीं है तो पंच महाभूतों से बने हुए शरीर में भेद कहां से आया, भेद है ही नहीं, अभेद है, वही अक्षर तत्व है। अक्षर तत्व गुरु परंपरा से प्राप्त, जैसे अक्षर जो बने वैसे ही बने चले आ रहे हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। अक्षर तत्व, अक्षर तत्व माने तत्व माने तत्व और तुम मिलके तत्व बन गया, माने ईश्वर और जीव दोनों आ गए, ईश्वर की ईश्वरता और जीव की जीवता। अगर निश्चय कर लो कि हम जीव नहीं हैं, तो जीवपना नहीं आएगा, देह का अभिमान नहीं खत्म हो जाएगा। अब देह में मिल करके हम जीव बन गए, इंद्रियों से मिलकर जीव बन गए, अब इंद्रियों में स्वयं सामर्थ्य नहीं है। अगर कानपुर में हड़ताल हो जाए तो आंख से कहो कि भैया एक दिन काम चला लेना, हम जा रहे हैं अमुक जगह, कान नहीं कर सकता, आंख नहीं कर सकती, कान का काम आंख नहीं कर सकती, आंख का काम कान नहीं कर सकता। तो इतनी तो सामर्थ है, इंद्रियां टूट फूट जाती हैं और हम देखते हैं, हम देखते हैं कि इंद्रियां टूट गई, अमुक इंद्री खराब हो गई, कान में सुनाई नहीं देता, आंख में दिखाई नहीं देता, तो हमको मालूम पड़ता है आंख में नहीं दिखता है, कान में ही सुनाई देता है, तो हम हुए मुख अहम, यही स्मरण होता है हमेशा, वही अक्षर तत्व है, उसी से सृष्टि हुई। अगर हुई है सृष्टि, एक तो है ही नहीं और है भी अगर, तो उसी से हुई, उसी से हुई, इसलिए प्रकृति को न कहीं कह दे सांख वाले, अणु परमाणु को न कह दे नैयायिक लोग, इसलिए अपने जन्माद्यता सूत्र कहके अपने अक्षर तत्व से मान लिए, क्योंकि कारण और कार्य एक होता है, कारण और कार्य एक होता है। तो अगर अक्षर तत्व से मानेंगे तो अक्षर ही तत्व सब में माना जाएगा। आत्मा विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी, दर्पण है एक तरह का जगत, उसी का प्रतिबिंबन हो रहा है, तो ईश्वर ही दृष्टि सब जगह मान लेंगे। कल बताया था सृष्टि न बदलो दृष्टि बदलो, दृष्टि अगर बदल जाएगी तो सृष्टि बदलने से कोई प्रयोजन नहीं, अपने आप बदल जाएगी। दूसरी बात एक ये कि यदि सृष्टि बदल नहीं हो, दृष्टि बदल लो तो सृष्टि अपने आप बदल जाएगी। दूसरी बात एक है कि सहन शक्ति होनी चाहिए, सहन शक्ति बढ़ाओ, अपनी अपनी सहन शक्ति बढ़ाओ, कोई कुछ कह दे तो क्षमा कर दो, यहां से शुरू होती है सहन शक्ति। और ना कोई कहे तो भी क्षमा होनी चाहिए, अपने जीवन में क्षमा शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। युधिष्ठिर ने वर्णन किया है क्षमा में कि क्रोध नहीं करना चाहिए, क्षमा शक्ति बढ़ना चाहिए। क्षमा शक्ति अगर आप में आ गई तो बहुत कुछ आ गया, चाहे कोई चाहे कुछ बकता रहा है, अपने क्षमा कर दिए, छुप रह गए, चुप रहने का मतलब ये है कि ईश्वर सब जगह दिखाई देता है। सब जगह जब ईश्वर देखने लगोगे तो दृष्टि बदल जाएगी अपने आप। जो आज आपको बुरा दिखता है वो अच्छा दिखने लगेगा, अच्छा दिखता है वो बुरा दिखने लगेगा, तो राग द्वेष हो जाएगा। अच्छा बुरा दिखाई देगा, बुरा अच्छा दिखाई देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप राग द्वेष में पड़ जाएंगे, और राग द्वेष में पड़ते पड़ते द्वेष में पड़ते पड़ते हिंसक हो जाएंगे, क्रोधी हो जाएंगे और नाना प्रकार के दोष आ जाएंगे। दोषों में संगठन होता ही है, एक दोष आया दूसरे दोष चले आएंगे, आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे। इसलिए दोषों में संगठन बताया गया, और गुणों में संगठन होता नहीं है। गुण आया है तो एक आएगा, फिर बड़े मुश्किल में दूसरा आएगा, तीसरा आएगा। क्षमा शक्ति अगर आप में बढ़ गई तो क्रोध नहीं होगा, काम नहीं होगा, कामना विहाय कामान या सर्वान पुमांश्चेत निष्प्रिया, निष्प्रिय हो जाओगे तो भगवान कृष्ण के समान जीवन बीत जाएगा। मुस्कान में थकान नहीं आएगी, हमेशा मुस्कराते रहोगे। जीवन में श्री कृष्ण का जीवन लेना चाहिए। उदाहरण में श्री कृष्ण का जीवन लेने से क्या होता है कि अपना सरल जीवन हो जाता, सरल सहज और सजग सावधान साधक को होना चाहिए। क्योंकि साधक है, अब साधक के जीवन में क्या क्या होता है ये आप आगे चल के सुनेंगे। मुंडक में एक यही आया है, अक्षरात संभव ऊननाभि का उदाहरण दिया, मकड़ी के जाला का, वो सिरते गणते चाहे अपने आप बनाती है, अपने आप खाए भी लेती है। और सता केशालोमानी, मनुष्य के जैसे केश लोम होते हैं रोए, ये दो उदाहरण कल दिया गया था, आज स्वामी जी और आगे बताएंगे।
नहीं नहीं देखो, पराविद्या का ये वर्णन करने के बाद नेत्रदेहग्राह्य अदृश्यग्राह्य आदि मंत्र से जो वर्णन किया है वो पराविद्या का वर्णन है। अब परमात्मा अति सूक्ष्म अति सूक्ष्म होने के कारण उसको कैसे जाने, तो शाखा चंद्र न्याय से परमात्मा की प्राप्ति होती है। इसलिए ये सृष्टि परमात्मा से किस प्रकार होती है और किस प्रकार ये फिर उसी में लीन हो जाती है, क्योंकि परमात्मा की सत्ता तो ये जगत के माध्यम से मालूम पड़ेगी। जब इस जगत का उदय होगा, विविध प्रकार की जब ये रचना को हम देखेंगे तो अपने को ये ज्ञात होगा कि ये सृष्टि किसी से उत्पन्न होती है, परमात्मा पर दृष्टि जाएगी, परमात्मा का ज्ञान होगा। इसलिए ये परमात्मा से सृष्टि किस प्रकार से होती है ये वर्णन करते हैं। देखो, आपको पहले निवेदन किया था कि ये जो मकड़ी है, मकड़ी, इस मकड़ी का दृष्टांत, मकड़ी का उदाहरण श्रुति में दिया था कि परमात्मा है तो बिना सहयोग के सृष्टि कैसे रचेगा, क्योंकि जो विचारशील पुरुष थे उन्होंने ये समझा कि जब सृष्टि के पहले कहीं सिर्फ परमात्मा था, सिर्फ परमात्मा था, कोई मटेरियल नहीं था, उपादान नहीं था, कोई सहयोगी नहीं था, कोई सहायक सामग्री नहीं थी, तो सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई? तो उसका ये उदाहरण देते हुए कि भाई जैसे ये मकड़ी होती है, उसके कोई सहायक थोड़ी होता है, बिना किसी के सहयोग और बिना किसी पदार्थ के और बिना किसी साधन सामग्री के जैसे मकड़ी जाला बनाती है और फिर उसको ग्रहण भी कर लेती है, निगल भी जाती है। तो इसी प्रकार से बिना सहयोग के, इसमें शंका नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये दृष्टांत है, ये उदाहरण है, आप देखते हैं। तो जैसे मकड़ी बिना साधन के, बिना सामग्री के, बिना सहयोगी सहकारी कारणों के जाला का सृजन करती है, इसी प्रकार से जो परमात्मा है वो भी करता है। ये आपको कल बताया था। एक शंका और हो सकती है कि ये जो परमात्मा है, श्रुतियों में नाना प्रकार के वाक कहेंगे भाई परमात्मा ही परमात्मा ये सब है, परमात्मा से भिन्न कोई दूसरी वस्तु नहीं है, तब संदेह ये होता है कि एक ही व्यक्ति अपना बाप भी हो, एक ही व्यक्ति अपना बेटा भी हो जावे, तो ऐसा तो नहीं होता है। बेटे से पिता अलग होता है, पिता से पुत्र अलग होता है, और सर्वम होत सर्वम खरुदम नेह नानास्ति किंचन करके अन्य का निषेध करते हैं, और सृष्टि की उत्पत्ति भी बताते हैं परमात्मा से, तो इसमें कोई उदाहरण है क्या? तो बोलते हैं हाँ उदाहरण है, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी अपने को विविध औषधियों के रूपों में प्रकट करती है। यदि कहो कि नहीं पृथ्वी विविध रूपों में अपने को प्रकट नहीं करती है, बीज से ये सृष्टि प्रकट होती है, तो आप देखिए कि बीज भी पृथ्वी का एक रूप है। बीज पृथ्वी तत्व ही है, बस बीज का सिर्फ इतना काम होता है। परमात्मा की देखो अचिंत महामाया, तो देखिए बीज सिर्फ पौधों में या फलों में अपने संस्कार से उनमें गुण केवल अलग अलग प्रकट होते हैं, लेकिन होते वो पृथ्वी से ही है। देखिए एक मोटा सा उदाहरण देख लीजिए कि जैसे हवा के संयोग से सागर में तरंग उठती है, तो उसका नाम तरंग हुआ, और जिसने उठी उसका नाम सागर हुआ, और जिसने उठाया उसका नाम पवन हुआ नारायण। तो यदि सागर से तरंग भिन्न है, तो फिर उसको सागर से कहीं पृथक उसकी प्राप्ति होनी चाहिए। यदि आप नाम मात्र से ही, आकृति मात्र से सागर से तरंग को भिन्न समझते हो, तो तरंग की स्थिति सागर में नहीं होनी चाहिए। सागर में तरंग की स्थिति है, उत्पत्ति है, स्थिति है, उसी में लय है, तो जो जिसके बिना ग्रहण न हो वो उससे भिन्न कैसे हो सकता है? सागर के बिना तरंग की उपलब्धि नहीं होती है। तो जैसे सागर से तरंगें उत्पन्न होती हैं और उसी में स्थित रहती हैं, उसी में विलीन हो जाती हैं, तो ये दृष्टांत हुआ ना। अब आप देखिए इसी प्रकार पृथ्वी में, पृथ्वी से सारी औषधियां पृथ्वी से उत्पन्न होती हैं, यदि इससे कहीं अलग कोई दूसरा कारण हो तो पृथ्वी में इनकी प्राप्ति नहीं होनी चाहिए, पृथ्वी में इनकी स्थिति नहीं होनी चाहिए, इसके बिना भी अर्थात पृथ्वी के बिना भी औषधियों की स्थिति होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। तो जिसमें स्थित हैं ये औषधियां, जिससे उत्पन्न हो रही हैं औषधियां और जिसमें विलीन हो रही हैं, क्योंकि जिससे उत्पन्न होगी उसी में विलीन होगी वस्तु। जैसे तरंग है सागर से उठती है तो सागर में ही विलीन होगी, आग में थोड़ी विलीन होगी, आकाश में थोड़ी विलीन होगी, हवा में थोड़ी विलीन होगी, जो कारण है उसी में विलीन होगी। तो ये बोलते हैं कि जैसे पृथ्वी में, पृथ्वी ही विविध रूपों में हो जाती है औषधियों के रूप में, इसी प्रकार से परमात्मा भी एक होने पर भी वह विविध रूपों में इन्हें जीवों के रूप में हो जाता है। घोड़ा भी वही होता है, हाथी भी वही होता है, ब्रह्मा भी वही होता है, मच्छर भी होता है, मक्खी भी वही होता है। तो ये दृष्टांत दूसरा था। अब एक शंका इसमें और रह गई कि यदि सृष्टि हम परमात्मा से उत्पन्न मानते हैं तो परमात्मा तो अमृत है, सत है, और परमात्मा तो चित है, और परमात्मा आनंद रूप है, तो सृष्टि भी सत रूप, चित रूप, आनंद रूप होनी चाहिए। ये बात संगत नहीं हो रही है कि सृष्टि परमात्मा से उत्पन्न हुई है, क्योंकि चीनी ही मीठी होती है, यदि चीनी से मिठाई बनाई जाए तो मीठी होगी खट्टी होगी, चीनी के अनुरूप ही मिठाई मीठी होगी। हाँ जी, तो ये सृष्टि सत चिद्रूप, सदरूप, चिद्रूप, आनंद रूप से उत्पन्न हुई है, तो इसको भी सदरूप, चिद्रूप, आनंद रूप होना चाहिए। कि कारण गुण कार्य आरभन्ते, कारण के गुण कार्य में देखे जाते हैं। जैसे चीनी कारण है और मिठाई कार्य है, तो जो मिठास चीनी में थी वही मिठास वहां मालूम पड़ रही है। इसी प्रकार से यदि परमात्मा से सृष्टि उत्पन्न हुई है तो परमात्मा सृष्टि भी सत होनी चाहिए, चित होनी चाहिए, आनंद रूप होनी चाहिए। पर यह सृष्टि सत नहीं है, असद है, अचित है, माने जड़ है और दुख रूप है, ये एक शंका हो सकती है। तो एक शंका ये हो सकती है। अब देखिए, कहते हैं कि नहीं, शरीर से जो इसमें उदाहरण दिया है वो आपको निवेदन करूं कि जैसे शरीर में नाखून होते हैं, बाल होते हैं, तो ये तो सद है, कहा ही देखो इसमें तदाक्षरा यथा सतः पुरुषात् केश लोमानी, सत से मने जीवात्मा से जैसे केश और लोम उत्पन्न होते हैं, तो जीव तो चेतन होता है और लोम के से जड़ होते हैं, आपको काट काट फेंकते रहते हो, काट काट फेंकते रहते हो। जैसे ये चेतन से नख और लोम आदि विलक्षण उत्पन्न होते हैं, कारण की अपेक्षा कार्य में विलक्षणता क्या है, वो विलक्षणता ये है कि कारण है इसका चेतन, ये शरीर चेतन है। ये मुर्दा से तो कोई चीज उत्पन्न नहीं होती है, जिंदा से उत्पन्न होती है। तो हो इस प्रकार से कहते हैं कि जैसे ये शरीर चेतन है और इस चेतन से विविध प्रकार की विलक्षण वस्तुएं इसमें प्रकट होती हैं, ये उदाहरण दिया। और ये समझ में ना आए तो देखिए, गोबर जड़ होता है, उसमें चेतन की उत्पत्ति हो जाती है, कीड़ों की उत्पत्ति हो जाती है, कहां गोबर जड़ है। तो ऐसा भी होता है कि कारण से कार्य में विलक्षणता वैलक्षण्य आ ही जाता है कुछ कारणों से। जैसे एक और उदाहरण महापुरुष जो देते हैं सो आपको सुना दूं, जो मैंने सुना है, वो कहते हैं कि देखो ये तंतु है, तंतु जानते हो ना, धागा, धागा है, धागा के एक किलो दो किलो बंडल हैं, उन बंडलों को यदि सीधा करके और हम अपने को उससे अपने शीत और धूप से रक्षा करना चाहें, बचना चाहें तो नहीं बच सकते हैं। ये वस्त्र है देखो किसलिए ढंग से, वो धागा ही तो इस वस्त्र का कारण है, धागा ही कारण है। तो आप देखिए धागा से, इस धागा जो कारण है उस कारण से ये वस्त्रकार में वैलक्षण्य उत्पन्न हुआ कि नहीं। इससे हम शीत का निवारण कर लेते हैं, इससे हम धूप का निवारण कर लेते हैं, इससे हम अपने शरीर को ठीक से ढक लेते हैं, बांध लेते हैं, पर वो धागे से संभव नहीं होता है। तो जैसे धागा कारण है और कारण की अपेक्षा कारगत वैलक्षण है, इसी प्रकार से परमात्मा सृष्टि का ये कारण है और माया जो परमात्मा की अनिर्वचनीय महामाया है, उस अनिर्वचनीय महामाया के कारण ही कार्य में वैलक्षण अर्थात सृष्टि में परमात्मा की अपेक्षा वैलक्षण उत्पन्न होता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये बात है आपको इस मंत्र में बताई गई। अब आप देखिए